हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 21। इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण एवं अध्ययन करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलोधरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं प्राव्रजन्तमनुपि तमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्व भूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति दिशतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन एवं श्रवण कर रहे हैं। अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 18 से लेकर 22 तक की जो श्लोक है उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण की महिमा का विस्तार किया है सूत जी ने। और इन्हें पढ़कर यह पता चलता है कि मनुष्य जीवन का एक ही लाभ है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। इस आपने मनुष्य जीवन ले लिया और उसमें यदि आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्दों का उनके रहस्य का श्रवण करने का केवल श्रवण करने का यदि अवसर प्राप्त हो गया तो समझो आपके जी आपका जीवन सफल है। यही लिखा ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया। आपके बाकी सारे जो कार्य हैं, अभद्र का नष्ट होना, हृदय के अंदर से रजोगुण तमोगुण का समाप्ति होना और जितनी भी दुर्वासना है, जो भी जीवन के जितने भी अवगुण हैं, जितने भी अभद्र हैं, जो भी लालसा है, जो भी हृदय की ग्रंथियां हैं, सब कुछ मुक्त संगस्य जायते, समस्त अपराधों से मुक्ति केवल श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाएगी। तो यदि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को एज इट इज श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है तो समझो कि हमारा जीवन सफल हो रहा है। तो परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें अवसर प्रदान किया है। आज हम श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूच्य कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे विद्यते हृदय ग्रन्थि चिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे विद्यते हृदय ग्रन्थि चिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे विद्यते हृदय ग्रन्थि चिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे भिद्यते हृदय ग्रन्थि चिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। शब्दों का अर्थ देखिए, भिद्यते, भिद्यते का मतलब होता है भिद जाती है या छिद जाती है। क्या छिद जाती है? हृदय ग्रंथि। हृदय कहते हैं दिल को, और ग्रंथि, हृदय का मतलब होता है दिल, हृदय, और ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, यानी हृदय के अंदर एक गांठ लगी हुई है और वो भिद जाती है। अब यहाँ पर इस हृदय ग्रंथि या हृदय की गांठ को महात्मा जन अलग अलग तरीके से बताते हैं कि हृदय जो है वो रियलिटी को अपने अंदर आने नहीं देता। यानी कि जैसे अगर हम एक देखें, एक बैग हो, उसको ऊपर से, जैसे शॉपिंग बैग हो या जो शॉपर हो, उसको ऊपर से हम वो टाइट गांठ मार देते हैं, फिर उसके अंदर अगर कुछ डालेंगे तो डाल नहीं सकेंगे ना, क्योंकि गांठ लगी हुई है। तो हृदय ग्रंथि का मतलब होता है, इसको चित्त जड़ ग्रंथि भी बोलते हैं। चित्त जड़ ग्रंथि मतलब जैसे वास्तव में हम चिन्मय जीव, चिन्मय है, सच्चित आनंदमय है, लेकिन इसी अपने सच्चित आनंदमय स्वरूप को रियलाइज नहीं कर पाता, बल्कि अपने आप को जड़ मान लेता है। चित्त जड़, वास्तव में चित्त है, परंतु उसने चित्त को बाहर निकाल के जड़ को ग्रांथ कर दी, ग्रांति मार दी होती है। तो फिर चित्त जो उसकी चित्त अवस्था है वो रियल हृदय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इसको श्री प्रभुपाद जी इसको कहते हैं अहंकार, फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो जिसको हमेशा कहते हैं ना, कि अहम का मतलब होता है मैं, कार मतलब करने वाला। वास्तव में भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि जीव इस प्रकृति के अंदर कैद हो जाता है, और तो फिर वो क्या कहता है कि मैं करता हूँ, मैं कार। तो ये फॉल्स ईगो वास्तव में यही चिच्चर, यही हृदय ग्रंथि है। और इसको ये भी है, ऐसे भी बता सकते हैं कि हृदय के अंदर जो संसार के भौतिक प्रेम को प्रवेश करा देते हैं और फिर उसको गांठ मार देते हैं, कि अब उस हृदय के अंदर ईश प्रेम के लिए यानी भगवत प्रेम के लिए स्थान नहीं बचाते। हम भगवान से व्यवहार करते हैं और संसार से प्रेम करते हैं। वास्तव में ये जीवन क्या है, हमें शास्त्र क्या सिखाता है कि संसार से व्यवहार करना है और कृष्ण से प्रेम करना है, लेकिन हम भगवान से क्या, बस ऐसी फॉर्मुलिटी से। व्यवहार का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर्मुलिटी पूरी करना कि भैया ना भगवान को सुबह को प्रसाद अर्पण कर दिया और दूसरा अगरबत्ती घुमा दिया, आरती कर ली, या फॉर्मुलिटीज है। बाकी हमारा हृदय पूरा किस में है, संसार में है। तो ये जो हृदय की ग्रंथि, क्योंकि हृदय को बाउंड कर दिया है कि भाई आपको प्रेम खाली संसार से करना है और भगवान से यदि करते, भक्त ये भक्त है, ये जो आज हम जिस श्लोक के विषय में पढ़ रहे हैं वो सांसारिक व्यक्तियों के विषय में, वो तो भगवान को जानता ही नहीं है ना, लेकिन जो भक्त होता है ना वही आगे बढ़ता है। और जब तक इस स्टेज पर नहीं आता है तब तक उसकी हृदय जो है ना ग्रंथि टूटती नहीं है। कहाँ से शुरू करता है, जब हमने पढ़ा था ना 18 से कि नित्यम भागवत सेवया करने से बाद नैष्ठिक की भक्ति उत्पन्न होती है, उसके बाद तदा रजस तमो भाव, उसके रजोगुण तमोगुण के भाव समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद वो विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है और प्रसन्न मन के साथ भगवान की भक्ति करना शुरू करता है। जब उसका मन विशुद्ध सत्व में स्थापित हो जाता है और हृदय प्रसन्न हो जाता है और भगवान के ज्ञान और विज्ञान को, यानी क्या है वो के तत्व ज्ञान जो स्वरूप शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति के आश्रय जो भगवान है उसके विषय में वो संपूर्ण ज्ञान वैज्ञानिक तरीके से जब समझ लेता है फिर क्या होता है ये बताया जा रहा है। विद्यते हृदय ग्रंथि, फिर उसके हृदय के अंदर जो ग्रंथि लगी हुई है वो भिद जाती है, वो छिद जाती है। क्योंकि अब यहाँ पर इसका अंतिम शब्द देखें कि दृष्ट एवात मनीश्वरे, तो ये होता कैसे है? दृष्ट, दृष्ट का मतलब होता है देखने के पश्चात, क्या देखने के पश्चात? एवात निश्चय ही आत्मनीश्वरा, आत्मनी मतलब आत्मनी स्वयं यानी आत्मा को, ईश्वर आत्मा के अंदर यानी आत्मा के स्वरूप को, जैसे पहले अपने आप को जड़ मान रहा था ना, लेकिन दृष्ट एवात मनीश्वरे जब वो अपने आप की रियलिटी को समझता है कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर थोड़े हूँ, जब उसको ये पक्का अभी पता चल गया है, बट बाद में क्या होता है दृष्ट एवा, फिर वो दिखता है, फिर वो अनुभव होता है, और जब अपने आप को आत्मा अनुभव करना शुरू हो जाता है जीव, तो फिर आत्मा की रियलिटी भी अनुभव हो जाती है, फिर तो पता चल जाता है ना कि आत्मा आया किधर से। अभी हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो कितना पता है अपने शरीर के बारे में कि एक तो छोटा बच्चा भी होगा फिर बोलेंगे आप किसके बेटे हो, फौरन अपने पिताजी का नाम बताएगा, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, आपका स्वरूप क्या है, हर चीज, मतलब जब बोलना शुरू करता है तभी वो अपने शरीर से रिलेटेड हर चीज को समझता है ना कि ये आपका क्या लगता है, वो आपका क्या लगता है, टिच करके, जैसे हम क्या करते हैं पॉइंट ऑफ करके बताते कि हाँ बेटा ये कौन है, तो वो बताता है कि, फिर जब आप आत्मा के दृष्ट एवात्मनेश्वरे, जब आप आत्मा के स्तर को अनुभव करोगे, अपनी रियलिटी को जानना शुरू करोगे, फिर आत्मा से रिलेटेड जो भी चीज है उसको आप है ना इतना इजीली एक्सेप्ट करोगे, जैसे बच्चा कैसे एक्सेप्ट करता है कि यही मेरी माँ है, यही मेरा पिता है, उसमें उसको जरा भी संशय नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर जब दृष्ट एवात्मनीश्वर हो जाता है, जब अपने आप को आत्मा के स्वरूप में जीव अनुभव करने लगता है, तो क्या होता है? विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर जो ग्रंथि यानी संसार से प्रेम करने की वासना और भगवान के साथ ना प्रेम, प्रेम नहीं होता, व्यवहार होता है, वो ग्रंथि टूट जाती है और क्या होता है? सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। तब सुंदर है, सिद्ध्यन्ते का क्या मतलब है कि खंड खंड हो जाते हैं, ऐसे बोलते हम लोग बोलते हैं ना छिट छिट हन हन छिंद छिंद, ये मतलब तोड़ देना, खंड खंड करना, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाना। क्या टुकड़े टुकड़े हो जाता है? सर्व संशया, जितने भी हृदय के अंदर संशय हैं वो सब छिंद छिंद हो जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, क्या भक्त जो कि भगवान के विषय में अब श्रवण करना, शुरू से हमने सुना था कि उसके हृदय में श्रवण करने की इतनी लालसा है और ये तो आखिरी स्टेज है ना जब ये विद्यते हृदय, तो क्या भक्त पहले उसके हृदय में संशय होता है जब भक्ति में आता है? भक्त के हृदय में बहुत सारे संशय होते हैं वास्तव में। श्रीपाद श्रीधर स्वामी और अलग अलग टीकाकार बहुत बहुत बताते हैं कि हृदय के अंदर सबसे पहला एक भक्त के संशय ये होता है कि मैं जो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ? ये जो शास्त्र में पढ़ा हूँ कि ना केवल श्रवण और कीर्तन ही भगवान को प्राप्त करा देंगे, तो क्या ऐसा होगा कभी मेरे साथ? मैं ये सही कर रहा हूँ जो मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान की? क्या भगवान कभी आएंगे, मुझे दिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, दिस द एवात्मनीश्वर, जब आप अपनी आत्मा को देख लेते हो तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। फिर जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है फिर तो उसका ये संशय मिट जाता है ना, क्योंकि देख लिया। पहला क्या संशय होता है, पता नहीं कभी मुझे भगवान दर्शन देंगे, और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे संशय होते हैं कि मैं जो रोजाना इतनी इतनी माला करता हूँ, और कभी मैं निर्जल एकादशी उपवास रखता हूँ, और हर दफा एकादशी रखता हूँ, सुबह को प्रभात साधना करता, पता नहीं मैं ऐसा कार्य करता हूँ क्या कभी भगवान मुझे अप्रिशिएट करेंगे, क्या भगवान देख रहे हैं, क्या भगवान है ना कृष्ण वाकई में उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा भक्त मेरी उपासना का, मेरे हृदय में तो कितना अपराध है। लेकिन शास्त्र तो कहता है कि यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो क्या अभी मेरे अपराध नष्ट हो गए हैं, क्या अभी मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूँ जब भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहा हूँ, जब मेरे हृदय में इतनी तीव्र इच्छा है भगवान की कथा श्रवण करने की, तो सद्यो हृदय वरुद्यते तकृति भी, तो मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो रहे हैं ना, मुझे दिख रहे हैं ना। अब जब मुझे वो दिख रहे, मतलब मुझे तो वो दिख रहे नहीं है अभी, लेकिन क्या वो मुझे दिखेंगे, क्या वो मुझे देख रहे हैं? और अगर वो मुझे देख रहे हैं, मेरी सारी साधना को वो देख रहे हैं, तो क्या वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, क्या सोचेंगे कि सही कर रहा है? जी, जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ने लगता है तो उसको अपनी साधना में केवल त्रुटियां ही दिखती हैं। शुरू में लगता है उसको मैं 20 माला कर रहा हूँ, 25 माला कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसको लगता है कि मुझे कुछ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करने के जो साधन है उसको मैं सही तरह से कर नहीं पा रहा हूँ, ना मैं शास्त्र को सही तरह से समझ पा रहा हूँ, ना ही मैं सही तरह से श्रवण कर पा रहा हूँ, ना मैं जब सही तरह से कर पा रहा हूँ, ना मैं कोई सेवा, ऐसा हृदय में ऐसा लगता है कि बाकियों से बहुत मैं मतलब सही सेवा नहीं कर रहा हूँ, तो क्या भगवान इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्या भगवान को ऐसा लगेगा कि ये सही नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे कि इसको तो कुछ सही कर ही नहीं रहा है। तो ये हृदय के अंदर काफी संशय होते हैं भक्त के, भक्ति में आने के बाद जब आगे बढ़ते तो भी ये संशय बाकी रहते हैं, लेकिन दृष्ट एवात्मनीश्वरे, जब हृदय के अंदर अपने आप को आत्मा अनुभव हो जाता है और आत्मा यानी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, भगवान के साथ उसका योग हो जाता है, संपर्क हो जाता है, भगवान के साथ अपना रिश्ता ना केवल जान लेता है बल्कि उसको अनुभव करने लगता है, फिर क्या होता है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। क्षीयन्ते का क्या मतलब होता है, समाप्त हो जाते हैं, क्या समाप्त हो जाते हैं, अस्य कर्माणि, चा मतलब तथा, अस्य मतलब उसकी कर्माणि यानी सकाम कर्मों की समस्त श्रृंखला समाप्त हो जाती है। क्या हो जाता है कि विषय भोगों के प्रति जो उसके प्लान्स होते हैं, सकाम कर्म कि ये करना है मुझे, ये करना है, अभी हृदय के अंदर काफी प्लान्स होते हैं ना हर व्यक्ति के, लेकिन वो सारे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, विषय भोगों के सारे प्लान्स जो लालसाएं हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और अब ऐसे कैसे है कि इसका क्या मतलब है, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, जब हम भगवान को हृदय में अपनी आत्मा को पहले रियलाइज करते हैं फिर भगवान को रियलाइज करते हैं तो हृदय की समस्त ग्रंथियां टूट जाती है, यानी अपने आप को फिर यह शरीर नहीं मानते हैं, फिर ये रियलाइज कर लेते कि हम आत्मा हैं, और समस्त संशय, क्योंकि अब भगवान को साक्षात्कार हो गया तो फिर तो कोई संशय रह नहीं गया ना, क्योंकि जितने भी संशय हैं उसका मूल क्या है कि पता नहीं भगवान मुझे दिखेंगे, कभी दर्शन देंगे, और जब भगवान ने दर्शन दे के स्माइल पास कर दिया ना, फिर तो बस पता चल गया कि अप्रिशिएट कर रहे हैं वो मुझे, तो फिर सारे संशय मिट जाते हैं और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और कर्मों की जो श्रृंखला है वो समाप्त हो जाती है। अनुवाद देखिए, इस प्रकार हृदय की गांठ बिद जाती है और सारे संशय छिन्न छिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य अपने आप को स्वामी के रूप में देखता है तो कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है कि उसी के साथ अपने आप को देखना, यह ना दृष्ट एवात्मनीश्वरे, यानी कि जब पता चल जाता है कि आत्मा हूँ तो भगवान के साथ अब मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ तो मैं क्या हूँ, तो भगवान भी साथ साथ में दिखे। जहाँ तक आत्म स्वरूप में जीव की पहचान की बात है तो उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। क्या है वो? भौतिकतावादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं और ज्ञानी दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। अब आत्मा को यानी परमात्मा का अंश है, लेकिन उस परमात्मा को या भगवान का कोई रूप नहीं मानते ज्ञानी जन, वो सिर्फ एक सिंगारी मानते हैं। तो किंतु आध्यात्मवादी यानी योगी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो भिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। यानी कि अब देखो, सब लोग आत्मा को अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आत्मा है ही नहीं, कुछ क्या सोचते हैं है बट उसका कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन जो वास्तव में योगी जन है, आध्यात्मवादी है, वो क्या जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग भिन्न सत्ताएं हैं और गुणों के अनुसार उनमें भेद होता है। क्या? कि आत्मा जो है वो अणु है और परमात्मा जो है वो विभु है। अन्य बहुत से सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग विधि से श्री कृष्ण का सचमुच साक्षात्कार हो जाता है तो ये सारी कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। पहले हम सोचते हैं, जब भक्ति में भी आते हैं तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रास्ता गलत हो, है ना। कोई कोई भक्त जो नींव अभी तक जो इतने ज्यादा दृढ़ नहीं होते हैं, जिनको ज्यादा भक्ति भक्तों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, तो दूसरे लोग जब उनको बताते हैं कि नहीं आप तो ये कृष्ण भक्ति कर रहे हो, इससे ऊपर उठना है आपको, आपको भगवान के निर्विशेष रूप की ओर आना, तो उनको ऐसा लगता है वाकई में मैं तो अभी बहुत नीचे हूँ। मतलब हृदय के अंदर इतना संशय होता है कि पता नहीं ऐसा नहीं हो कि वो लोग सही कह रहे हो, मैं बल्कि गलत हूँ। लेकिन जब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किंतु जब भक्ति योग विधि, ये विधि सबसे ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्या? भगवान के विषय में श्रवण करना और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, ये भक्ति योग विधि है। तो इससे क्या होता है, श्री कृष्ण का सचमुच साक्षात्कार हो जाता है, दृष्ट एवात्मनीश्वर, और तो ये सारी कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। फिर उसे ये यकीन हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम के करने के अतिरिक्त तो और कोई भी सहारा ही नहीं है संसार का। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी कल्पनाएं गहनतम अर्धरात्रि के समान है। ये जो भौतिक कल्पनाएं हैं कि भगवान के विषय में अलग अलग जो कल्पनाएं हैं, वो सब को श्री प्रभुपाद जी अंधेरी रात के विषय में बता रहे हैं और स्वयं श्री कृष्ण सूर्य के समान है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ज्यों ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदय हो जाता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीव आत्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। भगवान हृदय के अंदर आ गए तो जितनी भी भौतिक कल्पनाओं का जितना भी अंधकार है, अब वो सब माया के कारण है, है ना। श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, याहार कृष्ण ताहार नाही माया रे अधिकार। अब कृष्ण रूपी सूर्य हृदय के अंदर उदित हो गए तो फिर माया के द्वारा जो भी कल्पनाएं हैं, वो भौतिक कल्पनाओं जो अंधकार के रूप में है, वो स्वतः चली जाती है। सूर्य के आने के बाद उनको अंधकार को भगाने की जरूरत नहीं होती है। कभी हम लोग बोलते हैं रूम में कि भाई अंधकार अब तुम चले जाओ, अब सूर्य आया है, नहीं, अंधकार सूर्य के प्रकट होने के साथ ही चला जाता है। उसी तरह जब हृदय के अंदर कृष्ण रूपी सूर्य आता है तो समस्त हृदय की ग्रंथियां, सारे संशय स्वतः नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में वास करने वाले अंतर्यामी कृष्ण की कृपा से स्पष्टतया प्रकट हो जाता है। वास्तव में ये सत्य जो है वो हृदय के अंदर पहले से ही है। वास्तव में हम सब भगवान के भक्त शुरू से हैं। कृष्ण भावनामृत जो है या कृष्ण से प्रेम जो है वो हमारे हृदय में पहले से ही, ऐसा नहीं है कि कोई भक्त आपके जो प्रचार करके आपके हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम डालेगा नहीं। वो कृष्ण प्रेम अंधकार के कारण, माया के कारण ढक गया है और जैसे ही कृष्ण नाम रूपी सूर्य, क्योंकि कृष्ण अभिन्नत्व नाम अनामिनो, कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के गुण, ये सब अभिन्न है। तो जैसे जैसे वो कृष्ण के नाम और कृष्ण के श्रवण, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण आप करते जाओगे तो सूर्य प्रकाशित हो जाएगा कृष्ण नाम का। और जब कृष्ण रूपी सूर्य उदय हो जाएगा तो जितना भी अंधकार है या जितना भी अज्ञान है जिससे वो प्रेम छिपा हुआ था, वो प्रेम स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, स्पष्टतया प्रकट हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में 10.11 में भगवान कहते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे ये, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। शिवपाल जी बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए तेषामेवानुकम्पा, अनुकंपा का मतलब होता है बहुत बहुत अनुकंपा करके। तेषा मतलब किसके ऊपर, वो 10.10 में भगवान पहले ही बता देते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो कंटिन्यूस प्रेम से मेरा भजन करते हैं। भजन कैसे करते हैं, श्रवण करके एवं कीर्तन करके। तो क्या करता हूँ मैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्तों पर मैं इतना अनुकंपा करता हूँ, तेषा में अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम, भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। नाशयाम आत्मभावस्थो, आत्मभावस्तु यानी हृदय के अंदर इतना बड़ा सूर्य प्रकाशित कर देते हैं। नाशयाम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन वास्वता, यानी कि आत्मा के अंदर जो अंधकार है उसको ज्ञान के दीपक से नाश कर देता हूँ। भगवान इसे बताते हैं, नाशयाम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो सारे संशय, जब ज्ञान का दीपक उदय हो जाता है, हृदय के अंदर प्रकाश हो जाता है, तो सारे संशय के घन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं रह सकता। कितना अच्छा श्री प्रभुपाद ने बताया है कि देखो, जो भक्त भगवान का तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वक, जो प्रेम से भगवान का भजन करता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है एवं भगवान का नाम का जप करता है, तो भगवान ने क्या लिया, दायित्व लिया है। भगवान के द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व लिया। भगवान ने कहा, तेषां मे वानुकम्पार्थम अहम् अज्ञानदं जमतम, मैं क्या करूंगा, अब वो खुद भक्त क्या करेगा, खाली मेरा भजन करेगा, तो मैं क्या करूंगा, अंदर बैठ के एक ज्ञान का दीपक रोशन कर दूंगा, ज्ञान का सूर्य रोशन करूंगा। तो श्री रूपा जी बोलते हैं, भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व किसका है, भगवान का है। तो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हुआ वो भक्त जो है उसके हृदय के अंदर अंधकार तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने ये बोल दिया कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूंगा ऐसे। तो क्या होगा, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि टूट जाएगी और छिद्यन्ते सर्व संशय, क्योंकि भगवान ने स्वयं ज्ञान का दीपक हृदय के अंदर प्रकाशित किया है, तो हृदय के अंदर जो भी संशय है वो नाश हो जाएंगे। उसे परम तथा सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञान होता है, सब कुछ उसे ज्ञान हृदय के अंदर स्वतः आता है। भक्त को कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली श्रवण करो और भगवान के नाम का जप करो, रिलैक्स हो जाओ। भक्ति करना बहुत आसान है, भगवान को समझना बहुत आसान है, भगवान को प्राप्त करना भी बहुत आसान है, लेकिन संसार को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, संसार को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन ना जीव क्या है, इस संसार में प्रकृति में आने के बाद जो मुश्किल मुश्किल कार्य है ना उसको करना करने की इच्छा करता है। अब भगवान को समझने के लिए भगवान ने क्या किया, तेषां हृदय युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, बस इतना सा काम है। आपको क्या करना है, प्रेम से मेरे नाम का भजन करना है और मेरी कथाओं का श्रवण करना है, बस कितना आसान है। करने में कोई मुश्किल है, छोटा बच्चा ना अभी पैदा हो जाए उसको बिठा दो, बोलो आपको खाली श्रवण करना है, समझने की तो बात ही नहीं की है कि सारी चीजें तुमको समझनी भी है, खाली आपको भागवतम श्रवण करना है और भगवान की कथा भगवान के नाम का जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कितना आसान है। लेकिन इतना मूर्ख है जीव कि ये इतना आसान रास्ता स्वीकार नहीं करता और अलग अलग चीजों में लगता है, जो मुश्किल मुश्किल चीजें हैं, ज्ञान करो ध्यान करो तपस्या करो, ये सब है ही नहीं ना इस कलयुग के लिए। और साफ कह दिया कि इसके जरिए इन सब के जरिए तो भगवान आपको मिलेंगे भी नहीं कलयुग में। कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा, कीर्तन और श्रवण के अतिरिक्त तो कोई गति नहीं, लेकिन जीव जानबूझ के मुश्किल चीज को। अभी देखो मनुष्य है, मनुष्य की तरह बोलना कितना आसान है, इंसान है तो इंसान की तरह वो बोल सकता है ना, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है कुत्ते की तरह बोलने की। इस कभी कभी वो फंक्शंस रखते हैं यहाँ पर, ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर है ना एक जीव होगा एक इंसान होगा, वो कुत्ते की तरह बोलना शुरू करेगा और लोग टिकट लेके जाते हैं वहां पर देखने की। अरे कुत्ते की लैंग्वेज देखनी है तो कुत्ता जो गली में भौंक रहा है उसको जाके देखो ना, वो मनुष्य जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है उसको देखने की, और वो मनुष्य है उसको जरूरत क्या है कुत्ते की तरह भौंकने की, उसको अगर वो मनुष्य बना है तो मनुष्य की तरह बोले ना, अगर वो कुत्ते की तरह भौंकना चाहता है तो फिर उसको भगवान को भगवान भी सोचेगा खामखा इसको मैंने कुत्ता बनाया होता तो सही था, मनुष्य का एक कहना क्यों बनाया, मनुष्य बनाना ही नहीं चाहिए था इसको। तो इसी तरह से मनुष्य जो है आज का जो जीव प्राणी है ना वो उल्टी काम करना उसको अच्छा लगता है, सीधे काम जो सीधा सरल रास्ता ना उसको आसान रास्ता अच्छा। अच्छा एक दफा क्या हुआ, हम लोग 12वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, उसमें लिखा हुआ है भगवान कहते हैं क्लेशोदिक तरस्तेषां अव्यक्ता सत्तचेतसां अव्यक्ता हि गते दुःखं देहवत विरवाप्यते। कि देखो क्योंकि आप देहवत हो यानी कि आपके अंदर शरीर, आप शरीर से हो, आप स्वरूप की भक्ति करना, अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कहते हैं कि निराकार की भक्ति करना गलत है, ऐसा नहीं कहा भगवान ने, साफ साफ कहा कि जो निराकार की भक्ति करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्लेशो दिक्कत रस्ते सा उसको बहुत मुश्किल लगता है। तो हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा अब भगवान बता रहे हैं कि मुश्किल है तो फिर हम लोग को साकार की भक्ति करनी चाहिए ना, क्योंकि भगवान कहते हैं ये मुश्किल है तुम्हें है ना, मुश्किल लगेगा ये काम, जैसे माता बोलती है, जैसे हमें माता समझाती है कि देखो ये काम मुश्किल है ये काम तुम नहीं करो, या जैसे हम लोग जा रहे होते हैं सड़क पे तो हमें बताते कि भाई सड़क से अगर तुम ये गली में से जाओगे तो सेफ रहोगे, अगर सड़क से जाओगे तो एक्सीडेंट का खतरा, तो बड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, गली से निकलते ना सड़क में बहुत ट्रैफिक है हम लोग नहीं निकलते। लेकिन फिर भी बच्चा अगर बोलेगा कि नहीं फिर भी मुझे सड़क से जाना है, भले कितनी भी ट्रैफिक है एक्सीडेंट का कितना खतरा हो लेकिन फिर भी मैं वहां से जाना चाहूंगा, तो फिर है ना वो बच्चा जो है वो आज्ञाकारी तो नहीं कहा जाएगा ना, वो जब माँ बता रही कि इजी है सेफ रास्ता है तो इधर से जाओ। तो मैंने कहा कि देखो भगवान ने कहा है कि आसान रास्ता है जो साकार रास्ता है तो हमें उस पर चलना है। तो जिनसे बात हो रही थी वो कह रहे भगवान ने ये कहा ना कि ये आसान है, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि तुम्हें आसान रास्ते से ही जाना है, हम निराकारवादी हैं, हम भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, इसका मतलब ये थोड़े कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। भगवान ने स्वयं कहा है कि दो तरह के आध्यात्मिकवादी होते हैं, कुछ ना निराकार समझते हैं और कुछ साकार समझते हैं, तो हम निराकार समझ। अरे बाबा भगवान ने बोला आसान रास्ते पर चलो तो आसान, लेकिन यहाँ पर जीव जो है ना वो आसान रास्ता, आसान रास्ता क्या है, केवल तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, इससे क्या करूंगा तेषां अनुकंपार्थ, उस पर मैं बहुत ज्यादा कृपा करूंगा। क्लियर वर्ड्स कहें अनुकंपा, अनुकंपा मैं बहुत बहुत कृपा करूंगा, और फिर जो ज्ञान योग उसको बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला है, वो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक उसके हृदय में खुद ब खुद उदय कर दूंगा, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वह अंधकार में नहीं आ सकता, उसे परम तथा सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञान हो जाता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता, और चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। क्योंकि अब खुद से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन हमने तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं की ना, हमने केवल भगवान की कथाओं का श्रवण किया और भगवान के पवित्र नाम का जप किया, तो भगवान ने क्या किया, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तम् नाशयाम् आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। जो ज्ञान किसने दिया, भगवान ने दिया, तो जो भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान ने ज्ञान का दीपक जो हृदय के अंदर प्रकाशित किया है, वो तो कभी अपूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो तो संपूर्ण ज्ञान होगा। किंतु जो लोग अपनी सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो अपनी सीमित शक्ति के साथ प्रयास मत करो भगवान को जानने का, भगवान को प्रकट होने दो। वास्तव में ये सत्य है कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। जब ऐसे बोलते ना, ते ही जाने दे जेहे दियो जनाए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको केवल वही जान सकता है जिसे आप जनवाते हो, जिसे आप स्वयं प्रकट हो जाते हो। यानी इसका मतलब यह है कि स्वयं आप उसके सामने प्रकट होके उसको यदि ज्ञान प्राप्त करते हो अपने बारे में, तभी वो जान सकता अपने प्रयासों से नहीं। किंतु जो लोग अपनी सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय यानी तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है, जो एक अधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा तथा आत्मसमर्पण द्वारा प्रमाणिक होता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये पूर्ण ज्ञान जब तक आप किसी प्रमाणिक गुरु के शरण में नहीं आते हो तो तब तक आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि अधिकारी के साथ जब हम विनीत भाव से, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 4.34 में कि हम जब तक प्रमाणिक गुरु के पास नहीं जाते हैं जो तत्वदर्शी है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके पास जाकर प्रश्न करने हैं, परिप्रश्न करने, जिज्ञासा करनी है और उनकी सेवा करनी है। और ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, जब वो ज्ञानी जन उपदेशंति ते ज्ञानम, आपको ज्ञान का उपदेश देंगे तभी आपको रियलिटी यानी भगवत साक्षात्कार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उसी विधि के विषय में बता रहे हैं कि सेवा तथा आत्मसमर्पण द्वारा ही प्रमाणिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी सके। ऐसा नहीं है कि मैं जान लूंगा भगवान को खुद ही से और चुनौती देके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल महात्माओं की सेवा करके, जो तत्वदर्शी हैं उनकी सेवा करके जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उनके आदेशानुसार जब भजन करते हैं, जब कोई दीक्षा लेता है और दीक्षा के बाद जब गुरु मंत्र देता है उसका जब जप करते हैं ना, तो वो सिद्ध हो जाता है। और गुरु के आदेश के साथ जब हम जप करते हैं तो उसके अंदर इतना पावर हो जाता है कि भगवान भी उस भक्त का दर्शन करने के लिए आते हैं, उसको अपना दर्शन देने के लिए आते हैं। ऐसा है ना, जब नारद जी ने गुरु को ये आदेश दिया कि तुम सब कुछ छोड़ दो और केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करो, और भगवान के नाम का जब वो जप कर रहा था, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, श्वास लेना भी छोड़ दिया अंत में, तो फिर सब कह रहे थे भगवान आप ध्रुव को दर्शन देने क्यों नहीं जा रहे हो, आप लक्ष्मी महारानी बोल रही थी, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो, जाओ दर्शन दो उसको। तो विष्णु जी कहते नहीं, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं तो उसके दर्शन करने जाऊंगा। क्योंकि जब कोई शिष्य अपने गुरु आदेश का पालन करता है तो भगवान भी लालायित हो जाते हैं उसका दर्शन करने के लिए, तो भगवान विवश हो जाते, हृदय इतना भगवान का प्रफुल्लित होता है उसको उसको दर्शन देने के लिए, कि वो सोच रहे हैं कि मैं उनको दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, उनको उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान की मर्जी है, वो जिसके साथ जिसके सामने प्रकट होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर श्री रूपा जी कितना देखो अच्छा बता रहे हैं कि उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष जो पूर्ण का शुद्ध सफुलिंग मात्र है, पूर्ण का शुद्ध सफुलिंग यानी वास्तव में भगवान पूर्ण है, हम तो उनका एक छोटी सी, भगवान पूर्ण है हम छोटी सी चिंगारी है, और उतनी छोटी सी चिंगारी भगवान को ललकार, क्या हमारी औकात है, कीड़े से भी कम है, और भगवान को ललकारते कि मैं नहीं मानता भगवान को, मैं भगवान को मानता नहीं, भगवान के स्वरूप को नहीं मानता, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो भगवान की, भगवान का अधिकार है कि ऐसे, यहाँ पर इतना अच्छा श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उन्हें अधिकार है कि ऐसे सुफुलिंग जो कि माया के अधीन है उनके सामने प्रकट ही नहीं हो। भगवान साफ साफ कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, 7.25 में भगवान ने कहा मैं ऐसे लोग के सामने प्रकट होता ही नहीं, मुझे चुनौती दे रहे हैं कि तुम नहीं हो तो ठीक है भटकते रहो मेरे दर्शन के बगैर, मैं कभी भी दर्शन नहीं दूंगा। तो भगवान को अधिकार है, भगवान केवल निम्र, जो निम्र भक्त होते हैं जो कि दूसरे महात्माओं की सेवा करते हैं, जो भक्तों की सेवा करते हैं, जो प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, केवल उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्र श्री नारद जी को तथा शिष्य यानी उसके बाद शिष्य परंपरा को क्रम से प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही पूर्ण विधि है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस विधि से यदि हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ये सही विधि है। बाकी खुद से प्रयास करोगे, भगवान को चुनौती दोगे या फिर किसी ऐसी संप्रदाय के साथ जुड़ जाओगे जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई जैसे परंपरा प्रमाणिक नहीं है, तो फिर आप सोचो नहीं कि भगवान कभी आपको दर्शन देंगे। इस प्रकार के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की ग्रंथि भगवान द्वारा खोली जाती है। ये जो विद्यते हृदय ग्रंथि, जैसे मैंने आपको बताया चित्त जड़ ग्रंथि, तो ये आत्मा तथा पदार्थ की जो ग्रंथि है वो कौन खोलता है? दृष्ट एवात्मनेश्वरे, हृदय के अंदर भगवान आ जाते हैं, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हो जाता है तो भगवान वो ग्रंथि खोल देते हैं। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे झूठे ही जीव अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अहंकार है ये कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं भौतिक, अपने आप को भौतिक मानता है, आध्यात्म साक्षात्कार नहीं होता है। अतएव जो ही यह ग्रंथि शिथिल हो जाती है, संशय के सारे बादल तुरंत ही छट जाते हैं, जिसे पता चल जाता है कि भगवान का अंश हूँ और भगवान का, भगवान को प्रेम करना ही, मतलब पता नहीं चल जाता है, वो प्रेम स्थापित हो जाता है, तो जितने भी संशय के बादल हैं वो सब छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सत्काम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। कितना सुंदर है ये सिचुएशन कैसे आती है? जब हम कंटिन्यूस भागवतम का श्रवण करते हैं, मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है, फिर उसके हर जगह कृष्ण का साक्षात्कार होने लगता है, और सत्काम कर्मों के बंधन क्या है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितने भी बंधन है वो सब समाप्त हो जाते हैं और वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। फिर वो भक्ति कर रहा होता है, पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, वैदिक भक्ति करते हैं, जैसे व्यवहार में भक्ति है, लेकिन फिर वो भक्ति जो है वो हम हृदय से करते, प्रेम से करने लगते हैं। भक्ति साधिया है, साधन है, अभी हम भक्ति साधन के रूप में कर रहे हैं कि वो प्रेम प्राप्त हो, लेकिन यही भक्ति श्रवण एवं कीर्तन में बाद में हमारी इतना प्रेम लग जाता है कि जब वो हम कर रहे होते, जब नाम स्मरण कर रहे होते, भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा होता है कि अभी हमको कैसा लगता है, सोलह माला हो जाए तो समझो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, ऐसा लगता है ना, सोलह माला हो जाएगी फिर रिलैक्स हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब एक एक मंत्र जब मुंह से निकल रहा होगा ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उस एक एक शब्द में संतुष्टि मिलती है, ऐसा नहीं है, हम अभी क्या करते हैं, आज तो मेरी 16 माला कंप्लीट हो गई, जल्दी सुबह सोता है अर्ली, इसका मतलब है अब मैं रिलैक्स हूँ। नहीं, उस जप करने में जो आनंद है ना, उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं अभी। साधन भक्ति यानी भक्ति कंप्लीट करने की चक्कर में होते हैं कि कैसे मैं अपना जप कंप्लीट करूं, कैसे मैं ये, इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग है, ऐसे करते 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 हृदय के अंदर जब सारी ग्रंथियां टूट जाएंगी, संशय समाप्त हो जाएंगे और संपूर्ण सकाम कर्मों के बंधन टूट जाएंगे, फिर इसमें भक्ति साधन हो जाएगी, साध्य हो जाएगी, प्राप्त, यही प्राप्त किया है मैंने कि इसमें आनंद आ रहा है। भौतिक जगत में जीव स्वयं कर्म बंधन की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक उन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। जो भी हम भोग रहे हैं हमारे कर्मों के अनुसार, ऐसा नहीं है कि जो भी हमें मिल रहा है वो भगवान ने दिया है या फिर हमारा जो ये नसीब लिखा, बोले नसीब ने दिया है, नसीब कुछ नहीं देता है, नसीब जो है वो तुम्हारे कर्मों से बनता है। जो भी कर्म आप कर रहे हो, चाहे वो सोच कर रहे हो या चाहे किसी भी तरह से आप प्राप्त कर रहे हो, कार्य करके कर रहे हो या सोच कर रहे हो, जो भी मिला है आपको आपके कर्मों के अनुसार ही मिला है। तो किंतु जो ही वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बताया ना, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और सारे कर्म बंधन जो हैं वो छूट जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अहम त्वां पापे भयो, जितने भी पाप हैं सर्व पाप उनका मैं नाश कर देता हूँ, कर्म बंधन तोड़ देता हूँ, और त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। अभी क्या हम कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, उसकी बदली में हमें कुछ भोगना पड़ता है, लेकिन जब प्रेम स्थापित होता है तो भगवान क्या करते हैं, क्षीयन्ते सर्व कर्माणि, कर्मों के बंधन को तोड़ देते। यही कर्म योग है, यही भक्ति योग है। हाँ, भक्ति यानी कि भगवान के साथ अपना रिश्ता मान लिया, मैं भगवान का हूँ और जो भी कार्य कर रहा हूँ केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, इतनी है बस, इतनी कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस है। इतना सोच लेना कि मैं भगवान कृष्ण का हूँ और जो भी कार्य कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मुझे इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इस शरीर से संबंधित वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं है। यह है आत्म साक्षात्कार, यह है ग्रंथि छूटना, हृदय की ग्रंथि छूट जाती खुद ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बार बार ये अपने आप को याद कराना पड़ेगा, मुझे खाली क्या करना पड़ेगा, जीव को खाली क्या करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है एवं कीर्तन करना। ये बाकी सारा जो सकाम कर्मों के प्रति हमारा आकर्षण है, जो भौतिक वस्तुओं में जो प्रेम है, जो भौतिक चीजों में या भौतिक कार्यकलाप जितने भी प्लान है वो सब कुछ विद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथि टूट जाएगी और सारे संशय स्वयं ही मिट जाएंगे, कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, कोई कर्म प्रतिक्रिया नहीं देगा और हृदय के अंदर हम भगवान को अनुभव करने लगेंगे। केवल हृदय के अंदर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही, कृष्ण का प्रेम, और तब भक्ति जो है वो साध्य बन जाएगी। उसी में हमें आनंद आएगा और लगेगा कि इसके अतिरिक्त फिर भी यही करेंगे, कथा श्रवण और जब, फिर उसी में उतना आनंद आने लगेगा कि इसके अतिरिक्त और कोई चीज है नहीं ऐसी जिसमें कोई स्वाद है। संसार स्वादहीन हो जाएगा और भगवान स्वादिष्ट लगने लगेंगे, सुस्वादु लगने लगेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।